चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी को थोड़ा सा एक झलक उसकी देखी थी। अय्यूब पैगंबर और उनकी बीवी दोनों उस रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे जो बस्ती से बाहर जाता था। जिधर से भी लोग गुजरते इनको देखते तो ऐसे करते जैसे ये कोई अछूत है, कोई मुंह फेर लेता, कोई नाक पे कपड़ा रख लेता। एक आदमी ने घोड़े पर सवार करीब से गुजरते हुए कहा, अय्यूब बहुत ऐश के दिन देख लिए तूने, अच्छे दिनों में तो सभी अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं, अब देखते हैं तू क्या करता है। अय्यूब इसकी बात सुन के जैसे सब्र के घूंट पी लिए हूं, खामोशी से बीवी के सहारे चलते जा रहे थे। इसकी बात सुन के बोले, ऐ मेरे रब, तूने मुझे तमंगरी भी दी, औलाद भी दी, अहलो अयाल का वाली भी बनाया, लेकिन तू खूब जानता है कि उस वक्त भी मैंने कभी गरूर नहीं किया, कभी तकबर नहीं किया, कभी किसी पे जुल्म नहीं किया। मेरे रब, तू जानता है कि मेरा नरम गरम बिस्तर तैयार होता था और मैं रातों को तेरी इबादत के लिए खड़ा हो जाता था और अपने नफ्स को इस तरह डांट के कहता था कि तू इसलिए तो नहीं पैदा किया गया कि आराम करे। तेरी रजा की तलब में मैंने अपना आराम, अपनी राहत सब छोड़ दिए थे। दोनों चलते चलते बस्ती से अब बाहर निकल चुके थे। यहां पे दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, ना ही कोई ऐसी झोंपड़ी नजर आ रही थी, बस हर तरफ कूड़ा करकट बिखरा हुआ था, धूल उड़ रही थी, वीराना था। सारी बस्ती के लोग यहां पर आकर अपना कूड़ा डाला करते थे। झोंपड़ी तो कोई नजर ना आई, मगर एक तरफ एक छप्पड़ सा बना हुआ नजर आया। अय्यूब और बीबी दोनों कूड़े करकट से बचते बचते उस जगह पहुंचे और इस छप्पर के नीचे बैठ गए। मैंने सोचा ये यहां रहेंगे, नहीं, कोई मकान तो जरूर होगा जहां इनको जाके रहना होगा, कोई तो जगह बनाई होगी लोगों ने जो इनके लिए होगी। मैंने इधर उधर झांकना शुरू किया मगर दूर दूर तक मुझे कोई भी चीज नजर ना आई जो किसी के रहने के काबिल हो, सिवाय बदबूदार कूड़े के यहां पर तो कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा ये तो कोई रहने की जगह नहीं, ये तो एक डंपस्टर है, यहां पर ये कैसे दिन और रात करेंगे, ये बस्ती के लोगों ने क्या किया, यहां तक कोई भी इंसान नहीं रह सकता और फिर ये तो पहले ही बीमार है, ये कैसे यहां पे बचेंगे। पैगंबर अय्यूब के चेहरे पर दुख था, कर्ब था, एक तरफ ऐसी बीमारी कि देखा नहीं जाता था इनकी तरफ और दूसरी तरफ गंदगी के ढेर जिससे उठने वाला ताफुन तबीयत को बेचैन किए हुए थे। यहां खड़े होना भी मुश्किल था और कोई भी नाक पर कपड़ा रखे बगैर यहां से गुजर नहीं सकता था। ये तो दूर की बात कि यहां पर रहा जाए, और ये तो अल्लाह के नबी हैं, उसके प्यारे हैं, फिर इनके लिए ऐसी जगह, इतने सख्त हालात। मैं समझ गई कि दुख और इम्तिहान इस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह ताला किसी से नाराज है या उसकी नजर में वो इंसान बुरा है, बल्कि पैगंबर अय्यूब के हालात देखकर मुझे पता चला कि लोगों की दर्जों की बुलंदी के लिए भी बाज दफा इम्तिहानों में उनको डाला जाता है। मैं इन दोनों को देख रही थी, दोनों सख्त बेचारगी की हालत में बैठे थे। इस जगह तक तो कोई आता भी नहीं, यहां पे वही लोग आते जो अपने घर का कूड़ा फेंकना चाहते थे। दोनों परेशान बैठे हुए इस जगह को देख रहे थे जहां अब उनको जिंदगी के दिन गुजारने हैं। कहां उनका ठाठ बाठ, कहां उनके ऐश आराम, कहां वो दौलत की रेल पेल, नौकर चाकर, हर चीज का सामान, और कहां ये जगह जहां पर कोई फकीर भी आकर रहना पसंद ना करे, जो भी कोई यहां से गुजरता इन पर तरस खाता या कानों को हाथ लगाता, तौबा तौबा करते हुए वापस जाता। लोगों के इन रवैयों से इनके दिल छलनी हो रहे थे। कुछ लोग तो तंज करते हुए लौट जाते, कोई चुपती भी बात कहते हुए चला जाता, और ये बस सुनते ही रहते। सुनकर सबर, पैगंबर अय्यूब की जुबान पर तो उस वक्त से सिर्फ अल्लाह ताला का जिक्र ही था। बीबी ने उनको सहारा देकर वहीं लिटा दिया और बोली, ये पानी आपके पास पड़ा है, अब मैं जाती हूं और जाकर खाने का कुछ इंतजाम करती हूं। पैगंबर ने पूछा, क्या करोगी, कहाँ से लाओगी? बोली, मैं कुछ देखती हूं, पेट तो भरना है। ये कह के वो वापस बस्ती की तरफ चली गई और अय्यूब वहीं लेटे लेटे बस अल्लाह ताला का जिक्र ही करते रहे। इनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठ के बैठते या चल फिर के इर्द गिर्द की जगह को देख लेते। वहीं पड़े पड़े उन्होंने नमाज शुरू कर दी। पता नहीं कितने घंटे गुजर गए। शाम होने वाली थी कि बीबी दूर से आती हुई दिखाई दी। उनके हाथों में कुछ सामान भी था। आते ही उन्होंने सामान एक तरफ रखा और कहने लगी, चलें आपको पहले रफा हाजत के लिए ले चलूं। पैगंबर अय्यूब में इतनी हिम्मत भी ना थी कि खुद चल के जाते। इनका सहारा लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता इनको लेकर एक तरफ चली गई। कैसी बेबसी की ये हालत थी। इनकी बीमारी का हाल ये था कि बढ़ती ही जा रही थी और ये कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं। थोड़ी देर में भी इनको वापस लेकर आई। फिर इनको बिठा कर बोली, मैं आपको दवा लगा देती हूँ। पैगंबर तो खामोश बस देखते जा रहे थे, ज्यादा बात नहीं करते थे। बीबी ने आहिस्ता से चादर हटाई तो उनकी चीख निकल गई। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो देखकर मेरा खुद सर चकरा गया। पैगंबर अय्यूब के जिस्म के जख्मों में अब कीड़े चल रहे थे। ये क्या हो गया इनको? मैं फूट फूट के रोने लगी। इतने नेक, इतने प्यारे इंसान, इनके साथ ये हो रहा है। और ये नहीं कि इनसे कोई गुनाह हुआ है, ये नहीं है कि ये किसी चीज की सजा है, बस इम्तिहान है। अरे इतना शदीद इम्तिहान, और इनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। इन्होंने ये नहीं कहा मेरा कसूर क्या है, या अल्लाह मैंने क्या गुनाह कर दिया, मुझे तूने क्यों इस हाल में पहुंचाया। मुझे साथ साथ अपनी हालत पे भी शर्मिंदगी हो रही थी। हे, मैं कितने छोटे छोटे हालात के ऊपर कैसे गिले शिकवे करती रही। मैंने अपनी छोटी परेशानियों को हमेशा कितना बड़ा बनाया होता था, कितनी नाशुक्री करती थी। इनकी बीमारी की शिद्दत देख के मेरे तो खुद होश गुम हो गए। लेकिन इनमें कोई मायूसी नहीं थी, कोई बेसब्रापन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था। सारा दिन ये यहां पड़े रहे तने तनहा, कोई इनको पूछने वाला नहीं था, कोई इनसे बात करने वाला नहीं था। बीवी तो सुबह से गई नहीं, अब वापस आई थी। और उनकी भी क्या हालत होगी, क्योंकि जो औरत सुबह से मेहनत मजदूरी करने के लिए निकली हो, वापस आए और उसको शौहर को भी देखना है, उनको भी उठाना है, उनकी भी एक एक जरूरत पूरी करनी है। इस औरत का भी कितना हौसला है, ये भी कोई शिकायत नहीं कर रही, कोई हाय वाय नहीं है, कोई रोना धोना नहीं है। मेरे ऊपर तो थोड़ी सी परेशानी आती थी और झट आंसू बहने लगते थे, इतना वावेला करती थी। बीबी ने मुश्किल से पैगंबर को दवाई लगाई, फिर कहने लगी, अच्छा अब कुछ खा ले। इन दोनों की इस मुशक्कत को देखकर मैं तो हैरान थी, ऐसे भी लोग दुनिया में थे, मैं तो सोच भी ना सकती थी। मैंने तो अपने जमाने के फकीरों को, मिसकीनों को भी इस हाल में कभी नहीं देखा था। कोई इस कदर सख्त तरीन हालात से भी गुजर सकता है और फिर भी लब पे शिकायत ना हो। ये बातें पढ़ने में तो मुझे बहुत आसान लगती थी, मगर यहां देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वाकई सुनना बहुत आसान है, मगर जो इससे गुजर रहा है उसके लिए एक-एक लम्हा पहाड़ के बराबर है। और ये तो अभी एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, ना जाने कब तक इसी तरह पड़े रहना इनको। कोई इनका पुरसाने हाल नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त साथी नहीं, कोई गमखवार नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई साथ देने वाला ऐसा नहीं है। आके इनके पास बैठ के दो बोल हमदर्दी के ही बोल दे, इनके इस दुख को ही सुन ले, इनकी कोई मदद ही कर ले। लोग तो इनसे दूर भागते हैं कि कहीं ये बीमारी उनको ना छू जाए। बीबी आहिस्ता आहिस्ता खाने का सामान खोल रही थी। खाने में एक रोटी थी और जरा सा सालन। वो रोटी तोड़ तोड़ के शौहर को खिलाने लगी। मैं इनकी हिम्मत की दाद दिए बगैर ना रह सकी, इतनी फरमा बरदार और इतनी वफादार ऐसी औरत भी मैंने ना देखी थी। साथ ही कहने लगी, मुझे दो तीन घरों में काम मिल गया, उन्होंने ये खाना दिया, ये मेरे लिए एक और हैरत की बात थी। ये मेड है, पैगंबर की बीवी और घरों में काम कर रही है, ये नौकरानी बन गई है। हाय, मैंने अपना दिल पकड़ लिया। मेरे जमाने में अगर जरा सा भी किसी के स्टेटस में फर्क आता था, कमी आती थी, तो इतने रोने होते थे और इतने वावेले होते थे और बार बार यही सुनाया जाता था, हम तो ये होते थे, हम तो फलां होते थे। लोग डिप्रेशन में चले जाते थे, लोग कुछ काम करने के काबिल नहीं होते थे। जब वो अपने स्टेटस से नीचे आते थे तो संभल नहीं पाते थे, और इनके तो खुद इतने नौकर थे, अब ये खुद नौकर है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, ये औरत कितनी अजीम है। चाहती तो अपने शौहर को छोड़ के चली जाती, चाहती तो कभी वापिस ही ना आती। ये जो खुद मलका की तरह रहती थी, अब घरों में नौकरानी बनी हुई है। जिनके काम लोग करते थे, अब ये लोगों के घरों में काम कर रही हैं। अय्यूब के तो सबर को मैंने देखा था, मगर अब इनके सबर को देखकर भी हैरान थी। कोई औरत ऐसे हालात से गुजर रही हो और फिर भी ना तंग आके चीखे, ना भाग जाए और ना ही डिप्रेशन में बीमार होके पड़ जाए, ये मेरे लिए बड़ी अनोखी बात थी। इनका भी सब्र वाकई मिसाली था। सुबह से निकली हुई थकी हारी अब वापस आई हैं और इनको खाना खिला रही हैं। पैगंबर अय्यूब ने चंद निवाले खाए और फिर वहीं पीछे लेट गए। बीबी ने उनका मुंह पोंछा और जो बचा हुआ खाना था उसमें से खाने लगी। लगता है बस यही इनकी जिंदगी रह गई है, अब तो यहीं रहना है। पैगंबर अय्यूब ने पास पड़े पानी से बमुश्किल ही वुजू किया और फिर नमाज में मशगूल हो गए। ये जिंदगी कितनी मुश्किल जिंदगी है, जहां पे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, दिन ऐसे ही गुजरे जा रहे, कुछ भी बेहतरी आती भी तो दिख ही नहीं रही। एक एक दिन मुश्किल है यहां, दिन तो क्या एक एक लम्हा गुजारना, यूं लगता है वक्त तो गुजर ही नहीं रहा, यूं लगता है वक्त रुक गया है। मेरे घर में तो वक्त इतनी तेजी से गुजर जाया करता था, मगर यहां पर ऐसा लगता है दिन भी ठहरा हुआ है और रातें भी नहीं गुजरती। मरीजों को तो लोग आरामदेह जगह पे रखते हैं, साफ सुथरा माहौल देते हैं ताकि वो अच्छे हो जाएं, मगर यहाँ पे ना कोई आरामदेह बिस्तर है, ना कोई हाइजीन का ख्याल है, ना कोई माहौल ऐसा है। यूं लगता है कि लोग इनको मरने के लिए छोड़ गए, कि एक दिन तो इसी तरह कसम पुरसी की हालत में दुनिया से चले जाएंगे। दिन गुजरते जा रहे हैं और हालात कहीं से भी सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। आज ये दो आदमी इधर कहाँ निकल आए, साफ सुथरे लिबास में खाते पीते लग रहे हैं, हाथ में कुछ पकड़ा भी हुआ है, लगता है किसी को तलाश कर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं इधर उधर। एक इधर आके बोला, आपको अय्यूब का कुछ पता है, सुना है यहीं कहीं उसका घर है। पैगंबर अय्यूब मुश्किल से अपनी जगह से हिल के उठने की कोशिश में एक तरफ को गिर गए, फरमाया कहो मैं ही अय्यूब हूं। दोनों आदमी तो ऐसे हो गए जैसे इनको सांप सूंघ गया। मुश्किल से कहते हैं, क्या आप? फिर यूं लगा वो खड़े भी नहीं रह पा रहे, वहीं बैठ गए और फूट फूट के रोने लगे। अय्यूब आपने हमें पहचाना नहीं, हम आपके दोस्त हैं, वो जो फलस्तीन चले गए थे कई साल पहले, हमें तो कुछ पता ना था कि आपके साथ ये हो गया। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? हम तो आपको अच्छा भला छोड़ के गए थे, वहां तो एक आदमी हमें मिला, उसने आपका पता बताया कि आप सख्त बीमार हो चुके हैं और बहुत शदीद मुसीबत में हो गए। लगता है पैगंबर अय्यूब ने उनको पहचान लिया था, पहली दफा मैंने देखा, खुशी उनके चेहरे पे थी। फरमाते हैं मरहबा, मेहमानों को बिठाने के लिए इनके पास ना कोई कुर्सी थी, ना पलंग था, ना उनको खाने के लिए पेश करने के लिए कोई चीज थी। क्या करते, जहां ये राख पे पड़े हुए थे वहीं वो भी करीब बैठ चुके थे। पैगंबर अय्यूब को देखकर उनके आंसू थम नहीं रहे थे, उन्होंने जिस हाल में इनको देखा था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। उन्होंने अपने सामान से एक बोतल निकाली और कहने लगे, ये शराब है, आप पी लें, आपको शिफा हासिल हो जाएगी, हम इतनी दूर फलस्तीन से लेकर आए हैं। ये सुनना था कि अय्यूब सा तो गुस्से में आ गए, फरमाया तुम्हें शैतान खबीस लाया है, तुम्हारा खाना पीना मुझ पे हराम है। वो बोले, आप ऐसी हालत में हड्डियों का ढांचा बने हुए, सारा गोश्त पोश आपका झड़ चुका है, सिर्फ खाल रह गई है, शिफा के लिए दवा के तौर पे पीने में क्या हर्ज है? वाकई ऐसे हालात में कोई भी इनकी बात ना टालता, मगर ये तो पैगंबर का हौसला है कि उनको इनकार करना है, वरना कौन कह सकता था कि इलाज के लिए कोई चीज रद्द करते। इनकी तो हालत इतनी खराब है कि ऐसी हालत में तो कोई भी इंसान कहेगा कि हलाल हो या हराम, बस मुझे शिफा मिल जाए। हमारे यहां तो लोग शिफा पाने के लिए इस हद तक चले जाते थे कि अपना ईमान भी बेच देते थे, कुफर करते थे, शिर्क करते थे, दरगाहों पे जाते थे, ऐसे ऐसे काम करने को तैयार हो जाते थे कि ईमान चला जाए। तो ये शराब पीना तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। मेरा तो ख्याल था कि पी लें, क्या हर्ज है, अब इतनी भी क्या सख्ती। मगर वाकई मेरा ईमान कितना कमजोर था। मैं तो सिर्फ देख के ही कह रही थी कि इनको पी लेनी चाहिए, और वो जो इससे गुजर रहे हैं वो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है। दोस्तों के इसरार के बावजूद ये तो मानने को तैयार नहीं। आखिर उनमें से एक खड़ा हो गया और कहने लगा, जनाब आपकी ये हालत शायद इसीलिए हुई है कि आप जाहिर में कुछ होते और अंदर आपके कुछ और होगा, ऐसा ही हुआ होगा। उसकी बात सुन के मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, जब इंसान पर हालात मुश्किल होते हैं तो लोगों की बातें भी कैसी हो जाती हैं, तीरों की बारिश से ज्यादा तेज। दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली। अय्यूब के चेहरे पे जैसे एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। इतना दर्द तो शायद उनको इस बीमारी ने ना दिया हो जो लोगों की बातों ने दे दिया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और फरमाने लगे, अल्लाह खूब जानता है मैं क्या छुपाता हूं और क्या जाहिर करता हूं। मेरे रब ने मुझे इसमें मुब्तला किया ताकि वो देखे कि मैं सब्र करता हूं या बेसब्री। दोनों आदमी ये बात सुन के मुंह बना के वापस लौट गए। मैं इनको जाता देख रही थी और सोच रही थी, जब मुसीबत आती है तो एक नहीं आती, बल्कि मुसीबत पे मुसीबत आती है। आज हम यहीं तक करते हैं, इंशाअल्लाह ताला कल हम इसको मुकम्मल करेंगे कि उसके बाद इनके साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कभी हमें आजमाइशों में ना डाले, कि हमारे जैसे लोग आजमाइशें सहने के काबिल नहीं। अल्लाह ताला हमारे पर्दे ही रखे, हमारे ईमानों को मजबूत करे, लेकिन अल्लाह ताला हमें आजमाए ना। आजमाइश सहना बहुत मुश्किल काम है, और आजमाइशें पैगंबरों पर आईं, लेकिन उनके हौसले भी उतने ही बुलंद थे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल कर ले और हमारी खताओं को बख्श दे। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इंशाल्लाह जिक्र का।